एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जो सतह पर तो एक पिता पुत्र की मोटरसाइकिल यात्रा लगती है पर असल में जिंदगी, तकनीक और मायने खोजने के बड़े सवालों से जूझती है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट एम्परसे की बहुत ही मशहूर किताब ज़ीन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस।
हाँ, वही।
और ये सिर्फ कोई बाइक ट्रिप या रिपेयर मैनुअल नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है।
सही कहा, 50 साल बाद भी, बल्कि शायद आज की भागदौड़ भरी दुनिया में तो और भी ज्यादा। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है ना?
हाँ बिल्कुल, आजकल जब सब कुछ इतना तेज, इतना तकनीकी हो गया है तो कई बार लगता है जैसे चीजों का असली मतलब वो कहीं खो सा गया है।
हाँ, और ये जो तर्क और भावना के बीच एक दीवार सी लगती है।
अकेलापन, एक खालीपन सा महसूस होता है कई बार। ये किताब इन्हीं सवालों से टकराती है।
और प्योरसिक का नजरिया भी तो कमाल का है
ना? वो पूछते हैं क्या तकनीक और इंसानियत को दुश्मन होना ही है या हम इनके साथ कोई बेहतर रिश्ता बना सकते हैं।
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि प्योरसिक के इन गहरे, कभी कभी थोड़े मुश्किल लगने वाले विचारों को समझें।
हाँ, और देखें कि उनका ये क्वालिटी का जो नजरिया है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आ सकता है।
तो चलिए इस वैचारिक सफर पर निकलते हैं। शुरुआत करते हैं लेखक से, रॉबर्ट एम्परसिग। 1928 में जन्मे, 2017 में उनका देहांत हुआ। कोई आम इंसान तो नहीं थे वो?
बिल्कुल नहीं, सुना है IQ 170 था, आप सोचिए।
अरे बाप रे।
हाँ, और महज 15 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी पहुंच गए थे।
कमाल है।
उन्होंने विज्ञान भी पढ़ा, बायोकेमिस्ट्री, और दर्शन भी, मतलब फिलॉसफी। तो दिमाग तार्किक भी था और गहरे सवालों में रुचि भी थी,
और शायद पूर्वी दर्शन का भी प्रभाव था।
हाँ बिल्कुल, उसमें उनकी गहरी रुचि थी। वो कोरिया गए, भारत आए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी रहे, और साथ ही उन्हें तकनीकी चीजों को साफ साफ लिखने का, मतलब टेक्निकल राइटिंग का भी अनुभव था।
लेकिन जो बात पर्सिक को सबसे अलग बनाती है वो सिर्फ उनकी डिग्रियां या IQ नहीं है ना?
नहीं बिल्कुल नहीं, उन्होंने निजी तौर पर बहुत बहुत मुश्किल दौर देखा।
हाँ, वो क्वालिटी की खोज में इतने डूब गए कि उनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया था।
जी, उन्हें गंभीर मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी, ECT जिसे कहते हैं, उससे भी गुजरे।
इस अनुभव ने जैसे उनके अंदर एक तरह का बंटवारा सा पैदा कर दिया है ना?
हाँ कह सकते हैं, एक तरफ तो किताब का कथावाचक है जो वर्तमान में है, और दूसरी तरफ है फेडरस।
फेडरस?
जी।
ये कौन था?
फेडरस उनका ही अतीत का रूप था, बेहद प्रतिभाशाली पर अपने जुनून में शायद थोड़ा खोया हुआ।
तो ये जो भोगा हुआ यथार्थ था, इसने उन्हें तर्क की सीमाओं और जीवन की सच्चाइयों पर लिखने के लिए एक अलग ही गहराई दी होगी।
निश्चित रूप से, उनकी बातें सिर्फ पढ़ी हुई नहीं लगती, वो अनुभव की हुई लगती हैं।
सही कहा, अनुभव की स्याही से लिखी हुई। अच्छा, अब आते हैं किताब के मूल विचार पर, ये है क्या आखिर?
देखिए, मोटे तौर पर तो ये एक दार्शनिक खोज है, और ये खोज एक मोटरसाइकिल यात्रा के बहाने आगे बढ़ती है। पर्सिक जो हैं, वो पश्चिमी सोच के एक बड़े विभाजन पर सवाल उठाते हैं।
अच्छा, कौन सा विभाजन?
जिसे वो क्लासिक और रोमांटिक कहते हैं।
क्लासिक, रोमांटिक, ये क्या है?
क्लासिक मतलब वो नजरिया जो तर्क, विश्लेषण, तकनीक की समझ पर जोर देता है, चीजों के अंदर कैसे काम करती हैं ये जानना।
और रोमांटिक?
रोमांटिक नजरिया भावनाओं पर, कला पर, चीजों के बाहरी अनुभव पर जोर देता है, तकनीक से अक्सर थोड़ा दूर रहता है, उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता।
और प्योरसिक का मानना था कि यही बंटवारा दिमाग और दिल का, या कह लें तर्क और भावना का, यही हमारी आधुनिक बेचैनी की जड़ है।
बिल्कुल, और इसे पाटने के लिए, इसे जोड़ने के लिए वो क्वालिटी का विचार सामने रखते हैं।
क्वालिटी, ये शब्द तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ इसका क्या मतलब है? क्या ये चीजों का कोई गुण है या सिर्फ हमारी पसंद नापसंद?
प्योरसिक कहते हैं ये दोनों से ज्यादा बुनियादी है। ये ना तो पूरी तरह चीजों में है, मतलब ऑब्जेक्टिव है।
अच्छा।
और ना ही पूरी तरह हमारे मन में, यानी सब्जेक्टिव है।
तो फिर थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये।
हाँ थोड़ा है। वो कहते हैं कि ये वो अनुभव है, वो जुड़ाव है जो हमें किसी चीज से महसूस होता है, इससे पहले कि हमारा दिमाग उसे अच्छा या बुरा, सुंदर या बदसूरत कहे।
मतलब तर्क से पहले का अनुभव।
हाँ, एक तरह से इसे महसूस किया जा सकता है, भले ही शब्दों में पूरी तरह शायद ना बांधा जा सके, और प्योरसिंग के लिए यही क्वालिटी असलियत का आधार है।
बहुत दिलचस्प। और किताब में ये विचार कैसे खुलते हैं, मतलब कहानी कैसे आगे बढ़ती है?
देखिए, इसमें तीन स्तरों पर यात्रा एक साथ चलती है
तीन स्तरों पर।
हाँ, एक तो है असल सड़क यात्रा मिनेसोटा से कैलिफोर्निया तक। लेखक हैं, उनका बेटा क्रिस है और उनके दोस्त जॉन और सिल्विया हैं, सब मोटरसाइकिल पर।
ठीक है, ये तो हुई भौतिक यात्रा।
दूसरी है दिमागी यात्रा। कथावाचक सफर के दौरान अपने मन में पश्चिमी दर्शन और क्वालिटी पर लगातार सोचते रहते हैं। इन विचारों को वो चोटाक्वा कहते हैं।
चोटाक्वा, ये क्या होता है?
ये पुराने जमाने में अमेरिका में चलते फिरते ज्ञान चर्चा सत्र होते थे। तो ये उनके अपने दिमागी भाषण या विचार मंथन है।
अच्छा, और तीसरी यात्रा?
वो सबसे निजी है, मनोवैज्ञानिक यात्रा। कथावाचक अपने भूले बिसरे अतीत का सामना करते हैं।
मतलब
फेडरस का?
हाँ, फेडरस के विचारों का, उसकी तकलीफों का, ताकि वो अपने बिखरे हुए हिस्सों को जोड़कर फिर से पूरा महसूस कर सकें।
तो किताब का मकसद तकनीक को नकारना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके साथ सावधानी से, ध्यान से और एक तरह की कलात्मकता से जुड़ना सिखाना है।
और मोटरसाइकिल की मरम्मत, वो इसी गहरे जुड़ाव का एक प्रतीक बन जाती है।
एकदम सही। ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज की दुनिया में एक जुड़ाव और अर्थ खोज रहा है।
चलिए अब किताब के मुख्य हिस्सों से गुजरते हैं। कहानी से ज्यादा उसके पीछे के विचारों पर ध्यान देंगे। किताब करीब चार भागों में है। पहले भाग में यात्रा शुरू होती है।
हाँ, और शुरू होते ही हमें वो क्लासिक और रोमांटिक सोच का फर्क दिखने लगता है।
कैसे?
कथावाचक अपनी पुरानी मोटरसाइकिल की मरम्मत खुद करते हैं, उसकी हर आवाज, हर पुर्जे को समझते हैं। ये क्लासिक नजरिया है।
तकनीक को समझने वाला।
और उनके दोस्त जॉन हैं, जिनके पास नई चमचमाती BMW है, पर वो उसका हुड भी नहीं खोलना चाहते, बस चलाने का मजा लेते हैं। ये रोमांटिक नजरिया है, तकनीक से थोड़ी दूरी।
अच्छा, और यहीं पर गम्शन ट्रैप्स की बात भी आती है शायद।
हाँ, बिल्कुल। गम्शन मतलब किसी काम को करने का जोश, लगन, हिम्मत।
और ट्रैप्स मतलब फंदे।
सही, वो मनोवैज्ञानिक फंदे जो इस जोश को, इस गम्शन को खत्म कर देते हैं।
जैसे कि?
जैसे अधीरता या अहंकार कि मुझे सब आता है, या बोरियत, या फिर बहुत ज्यादा जल्दबाजी करना।
और ये सिर्फ बाइक रिपेयर में ही नहीं, किसी भी काम में आ सकते हैं ना?
किसी भी काम में, कोड लिखते हुए, खाना बनाते हुए, कुछ सीखते हुए, कहीं भी।
और इसी हिस्से में कथावाचक के अतीत के वो साये दिखने लगते हैं। फेडरस का जिक्र आता है।
हाँ, फेडरस का जिक्र आता है। मानसिक उलझनों के संकेत मिलते हैं और बेटे क्रिस के साथ एक तनाव भी महसूस होता है।
हाँ, क्रिस अक्सर बेचैन सा लगता है, उसे शायद पिता का ध्यान चाहिए होता है।
बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे भाग पर। सफर आगे बढ़ता है और दर्शन वो और गहरा होता जाता है।
यहाँ क्लासिको रोमांटिक विभाजन पर और बात होती है।
हाँ, कथावाचक उसकी जड़ों को खंगालते हैं और फेडरस की कहानी और खुलती है।
पता चलता है कि फेडरस कौन था, क्या करता था।
हाँ, पता चलता है कि फेडरल्स जो कथावाचक का ही पूर्व रूप था, वो एक कॉलेज में प्रोफेसर था और वो क्वालिटी के सवाल से बुरी तरह जूझ रहा था।
उसने क्या किया?
उसने अपने छात्रों से पूछा क्वालिटी क्या है। सब उसे पहचानते तो थे, पर कोई उसकी परिभाषा नहीं दे पा रहा था।
दिलचस्प।
यहीं से फेडरस इस नतीजे पर पहुंचा कि क्वालिटी वो शायद तर्क से परे है। ये अनुभव का मूल है, विषय और वस्तु के विभाजन से भी पहले की चीज।
और वो गम्शन ट्रैप से निपटने के तरीके भी यहीं बताए गए हैं।
हाँ, धीरज रखना, शांत रहना, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, ये शायद किताब का ज़ेन वाला पहलू है।
काम में दिमागी शांति खोजना।
बिल्कुल। लेकिन फेडरस के लिए खोज आसान नहीं थी। उसे स्थापित विचारों से, अपने सहकर्मियों से टकराना पड़ा।
फिर आता है तीसरा भाग। यहाँ फेडरस के विचार अपने चरम पर पहुंचते हैं।
हाँ, इस भाग में कथावाचक और क्रिस अकेले यात्रा कर रहे होते हैं और कथावाचक फेडरस के सबसे क्रांतिकारी विचार को याद करते हैं, क्वालिटी का तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स ऑफ क्वालिटी।
बापरे, ये तो बहुत भारी शब्द है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ?
आसान भाषा में कहें तो फेडरस का मानना था कि क्वालिटी ही असलियत की बुनियाद है। हम यानी सब्जेक्ट और दुनिया यानी ऑब्जेक्ट दोनों इसी क्वालिटी से उपजते हैं।
ये तो बहुत बड़ा दावा है।
हाँ, है तो। और यहीं वो प्राचीन यूनानी दार्शनिकों प्लेटो और अरस्तु पर सवाल उठाते हैं।
उन पर क्यों?
फेडरस को लगता था कि उन्होंने उत्कृष्टता या आरेट, जो कि क्वालिटी का ही एक रूप था, उसे बुद्धि और अमूर्त विचारों के नीचे दबा दिया। और यहीं से पश्चिम की सोच में वो विषय वस्तु का विभाजन गहरा हो गया।
ये थोड़ा मुश्किल है समझना, पर शायद मूल बात ये है कि पर्सिंग हर चीज में कीमत या क्वालिटी देखने का रास्ता खोज रहे थे।
हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। और जैसे जैसे ये दिमागी खोज गहरी होती जाती है, वैसे वैसे पिता और पुत्र के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ती जाती है।
क्रिस अपने पिता के अंदर के खालीपन से परेशान है,
बहुत परेशान। उसे वो पहले वाला पिता चाहिए जो शायद फेडरस के जुनून में कहीं खो गया था।
और साथ ही फेडरस के पतन की कहानी भी सामने आती है, कैसे उसका जुनून उसे समाज से काट देता है।
हाँ, और कैसे उसे मानसिक इलाज से गुजरना पड़ा, ECT हुई, वो सब बातें सामने आती हैं।
और फिर आता है चौथा और अंतिम भाग। यात्रा अपने अंत के करीब है, कैलिफोर्निया तट के पास।
यही कहानी अपने भावनात्मक शिखर पर पहुंचती है।
क्या होता है?
क्रिस पूरी तरह टूट जाता है। वो अपने पिता पर उदासीन होने का, परवाह नहीं करने का आरोप लगाता है।
ओह, ये तो बहुत मुश्किल क्षण होगा।
हाँ, और ये टकराव कथावाचक की सारी दीवारें गिरा देता है। उसे एहसास होता है कि फेडरस को नकारने से, उसे भूल जाने से काम नहीं चलेगा।
उसे अपने अतीत और वर्तमान को जोड़ना होगा।
बिल्कुल, तर्क और भावना को, फेडरस और खुद को, इन सबको एक साथ लाना होगा, एकीकृत करना होगा।
और क्या वो ऐसा कर पाते हैं?
हाँ, वो पहली बार हिम्मत करके क्रिस से अपने अतीत के बारे में, फेडरस के बारे में बात करते हैं, पूरी ईमानदारी से।
और इसका असर होता है?
हाँ, ये ईमानदारी का पल उनके रिश्ते को बदल देता है। क्रिस को पहली बार उसका पिता एक पूरे इंसान की तरह दिखता है, अपनी कमियों और खूबियों के साथ।
तो किताब का अंत एक तरह की सुलह पर होता है।
हाँ, एक गहरी समझ पर कि असली मोटरसाइकिल तो हमारा अपना आप है, और उसका रखरखाव मतलब है देखभाल से जीना।
और क्वालिटी में सिर्फ दिमागी समझ नहीं, बल्कि इंसानी जुड़ाव, परवाह, ये सब भी शामिल हैं।
एकदम सही।
वाकई बहुत परतें हैं इस किताब में। चलिए कुछ मुख्य संदेशों को समेटने की कोशिश करते हैं।
जरूर। पहला तो मेरे ख्याल से वही क्लासिक और रोमांटिक का मिलन।
हाँ, कि हमें चुनना नहीं है, तर्क या भावना, विज्ञान या कला।
बिल्कुल, दोनों जरूरी हैं। क्वालिटी इन दोनों को जोड़ती है, जैसे आप भारत में ही देखिए, किसी कुशल कारीगर के काम में।
हाँ, हुनर भी होता है जो क्लासिक है, और खूबसूरती भी होती है जो रोमांटिक है, दोनों एक साथ।
दूसरा, क्वालिटी की अहमियत, ये सिर्फ पसंद या नापसंद की बात नहीं है, ये अनुभव का, मूल्य का आधार है।
ये हमें चीजों और कामों में मायने देखने का एक नया तरीका देती है, जो सिर्फ तथ्यों या सिर्फ भावनाओं से परे है।
तीसरा, और ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, वो है देखभाल, केयर का महत्व।
हाँ, कि हम कोई काम कैसे करते हैं, हमारा रवैया क्या है, ये ज्यादा जरूरी है।
सही, देखभाल में योग्यता भी है और करुणा भी। सोचिए, जब कोई बावर्ची पूरे ध्यान से खाना बनाता है,
या कोई टीचर सच में लगन से पढ़ाता है, उस काम में एक अलग ही बात आ जाती है ना? वही क्वालिटी है शायद।
हाँ। चौथा है सिर्फ बुद्धि के खतरे। फेडरस की कहानी एक चेतावनी भी है
कि सिर्फ विचारों और सिद्धांतों में इतना ना उलझ जाएं कि इंसानी रिश्तों से ही कट जाएं।
बिल्कुल, जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा डेटा पर टिके फैसले इंसानी पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं।
और पांचवा संदेश, तकनीक के साथ हमारा रिश्ता।
हाँ, पर्सिक टेक्नोलॉजी के दुश्मन नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि मशीनें खराब हैं।
वो कह रहे हैं कि समस्या मशीन में नहीं, हमारे रवैये में है।
सही, अगर हम तकनीक को समझदारी से, देखभाल से, क्वालिटी की भावना से इस्तेमाल करें, तो वो भी खुद को जानने और बेहतर बनाने का जरिया बन सकती है।
जैसे अपने फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल सोच समझ कर करना, ये भी एक तरह का रखरखाव भी हुआ।
बिल्कुल। अच्छा, इस किताब में कई ऐसी पंक्तियां हैं जो एकदम दिमाग में बैठ जाती हैं, कुछ पर बात करें?
हाँ, क्यों नहीं। एक जो मुझे बहुत असरदार लगी, असली साइकिल जिस पर आप काम कर रहे हैं वो आप स्वयं नामक साइकिल है।
हाँ, ये तो बहुत सीधी और गहरी बात है। मतलब बाहर हम जो भी कर रहे हैं, बाइक ठीक करना हो, ऑफिस का काम हो, घर संभालना हो,
वो असल में खुद को समझने और संवारने का ही एक मौका है। हमारा बाहरी काम हमारे अंदरूनी विकास का माध्यम है।
बिल्कुल। और ये देखिए, क्वालिटी विचार और कथन की वो विशेषता है जिसे एक गैर सोच प्रक्रिया द्वारा पहचाना जाता है।
ये क्वालिटी के थोड़े रहस्यमयी स्वभाव की ओर इशारा है ना? कि इसे पूरी तरह तर्क से नहीं पकड़ा जा सकता।
हाँ, इसे महसूस किया जाता है। ये बुद्धि से ज्यादा अनुभव की बात है, इंट्यूशन की तरह शायद।
एक और जरूरी नजरिया, दुनिया को सुधारने की जगह पहले अपने दिल, दिमाग और हाथों में है, और फिर वहां से बाहर की ओर काम करें।
यानी बदलाव खुद से शुरू होता है।
हाँ, बाहर दुनिया में क्वालिटी लाने से पहले अपने अंदर, अपने काम में क्वालिटी लानी होगी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पहले।
और ये शायद सबसे क्रांतिकारी पंक्तियों में से एक है। बुद्ध, ईश्वरत्व, डिजिटल कंप्यूटर के सर्किट या साइकिल ट्रांसमिशन के गियर में उतनी ही सहजता से निवास करते हैं जितनी कि पहाड़ की चोटी पर या फूल की पंखुड़ियों में।
अरे वाह, ये तो आध्यात्मिकता और रोजमर्रा की जिंदगी, यहाँ तक कि तकनीक के बीच की दीवारी गिरा देती
है ना। मतलब मायने और पवित्रता वो कहीं भी मिल सकती है, बस देखने का नजरिया सही होना चाहिए।
ये सारे विचार आज के समय में बहुत काम के लगते हैं। इन्हें हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल तरीके?
हाँ, कई तरीकों से। जैसे अपने काम या शौक में जो भी करें उसे बस निपटाने की तरह नहीं,
बल्कि ध्यान से क्वालिटी के साथ करने की कोशिश करें। उसमें अपनापन डालें, अर्थ खोजें। जैसे कोई दर्जी जब बारीकी से सिलाई करता है,
या कोई गार्डनर पौधों की देखभाल करता है, वो एक तरह से पिडमिसिंग के दर्शन को जी रहा है।
और समस्या सुलझाने में वो गम्पशन ट्रैप्स वाली बात,
हाँ, उन्हें पहचानना। अगर किसी काम में फंसावा महसूस करें, झुंझुलाहट हो, तो रुक कर देखना कहीं अधीरता तो नहीं, या अहंकार या बोरियत।
और फिर
धैर्य रखना, काम को छोटे हिस्सों में बांटना, शायद थोड़ा ब्रेक लेना, या जरूरत पड़े तो मदद मांगना। ये सब उपाय हो सकते हैं।
रिश्तों में भी ये लागू होता है।
हाँ बिल्कुल, भावनात्मक ईमानदारी, अपने अच्छे बुरे, मजबूत कमजोर सभी हिस्सों को स्वीकार करना। जैसे कथावाचक और क्रिस का रिश्ता तब सुधरा जब पिता ने अपनी सच्चाई बेटे के सामने रखी।
अपनी कमजोरियां छुपाने की बजाय उन्हें स्वीकारना, ये रिश्तों को शायद ज्यादा गहरा बनाता है।
हाँ, और हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ हमारा रिश्ता, ये भी बहुत अहम है।
क्या हम अपने गैजेट्स के गुलाम बन गए हैं या हम उनके मालिक हैं?
क्या हम समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं? क्या हम इनका इस्तेमाल ध्यान से कर रहे हैं?
जैसे सोशल मीडिया पर कितना समय देना है, ये सोच समझ कर तय करना,
या सिर्फ इस्तेमाल करने की बजाय ये समझना कि ये एल्गोरिदम चीज क्या है, कैसे काम करती है, ये सब क्वालिटी लाने के तरीके हैं।
शिक्षा में भी तो इसका असर हो सकता है, ग्रेड्स से ज्यादा असली समझ पर जोर देना।
बिल्कुल, बच्चों को सवाल पूछने, चीजों की तह तक जाने के लिए प्रेरित करना, न कि सिर्फ रटने के लिए। ये सब तरीके हैं जीवन में क्वालिटी लाने के।
तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख निकल कर आ रही है वो ये है कि जीवन का अर्थ वो कहीं दूर नहीं खोजना है।
वो यही है, इसी पल में है, हमारे काम करने के तरीके में है, हमारे ध्यान में है। वो देखभाल ही शायद कुंजी है।
और मुझे जो बात सबसे ज्यादा छू गई वो ये है कि कैसे पियर सिंह ने तर्क और आध्यात्मिकता, पश्चिम और पूर्व, तकनीक और इंसानियत, इन सबको क्वालिटी के एक ही धागे में पिरो दिया है।
हाँ, ये दिखाता है कि हमें हिस्सों में बटकर जीने की जरूरत नहीं है।
हम चीजों को जोड़ सकते हैं, एकीकृत कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू चूज, वी कैन इंटीग्रेट।
तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि क्वालिटी को व्यक्तिगत जीवन में, काम में, रिश्तों में कैसे लाया जाए, पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे क्वालिटी की यह समझ हमें सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि समाज या सिस्टम के स्तर पर सोचने में भी मदद कर सकती है?
बड़ा सवाल है।
या
क्या ये मूलतः एक व्यक्तिगत यात्रा ही है? इस पर सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।